जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा बन यमुना तेरा बन जारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा
कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna,
जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा
श्रीमद्भागवतम की अनंत कोटि वैष्णवत्वविंद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके ग्रंथ राशि में भागवतम स्कंद 3 अध्याय 5 और श्लोक संख्या 23 कृपया मेरे बात दोहराए भगवानेक आसेदम् अग्र आत्मात्मनां विभो आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्योपलक्षणम् भगवानेक आसेदम् अग्र आत्मात्मनां विभो आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्योपलक्षणम् भगवानेक आसेदम् आत्मात्मनां विभो आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्योपलक्षणम् भगवानेक आसेदम् आत्मात्मनां विभो आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्योपलक्षणम् भगवानेक आसेदम् अग्र आत्मात्मनां विभो आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्योपलक्षण भगवानेकासेदम् अग्र आत्मात्मनं विभु आत्मेच्छानुगतावात्मा भगवानेकासेदम् शब्दार्थ इस प्रकार से है भगवान भगवान एकः अद्वय आस था इदम् यह सृष्टि अग्रे सृष्टि के पूर्व आत्मा अपने स्वरूप में आत्मानां जीवों के विभो स्वामी आत्मा आत्मा इच्छा इच्छा अनुगतो लीन होकर आत्मा आत्मा नानामति विभिन्न दृष्टियां उपलक्षण लक्षण अनुवाद और तात्पर्य इंग्लिश ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की अनुवाद समस्त जीवों के स्वामी भगवान सृष्टि के पूर्व अद्वय रूप में विद्यमान थे केवल उनकी इच्छा से ही यह सृष्टि संभव होती है और सारी वस्तुएं पुनः उनमें लीन हो जाती है इस परम पुरुष को विभिन्न नामों से उपलक्षित किया जाता है तात्पर्य यहाँ पर महर्षि श्रीमद् भागवत के चार आदि श्लोकों के अभिप्राय की व्याख्या प्रारंभ करते हैं यद्यपि मायावाद निर्विशेषवाद के अनुयायियों की श्रीमद् भागवत तक पैट नहीं होती पहुंच नहीं होती है किंतु कभी कभी वे उसके चार आदि श्लोकों को खींचतान कर काल्पनिक व्याख्या करते हैं किंतु हमें मैत्रेय मुनि द्वारा यहाँ पर दी गई असली व्याख्या को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि उन्होंने इसे उद्धव के साथ प्रत्यक्ष भगवान के मुख से सुना था इन चार आदि श्लोकों की प्रथम पंक्ति है अहम एवासम एवाग्रे मायावादी इस अहम शब्द की ऐसी गलत व्याख्या करते हैं जिसे व्याख्याकार के अतिरिक्त अन्य कोई समझ नहीं सकता यहाँ पर अहम की व्याख्या परम पुरुषोत्तम भगवान के अर्थ में की गई है व्यष्टि जीवों के अर्थ में नहीं सृष्टि के पूर्व केवल भगवान थे तब कोई भी पुरुष अवतार नहीं थे और जीव तो थे ही नहीं नहीं भौतिक शक्ति थी जिससे व्यक्त सृष्टि प्रभावित तो होती है तब सारे पुरुष अवतार तथा भगवान की सारी शक्तियां एकमात्र भगवान में समाहित थी यहाँ पर भगवान को अन्य समस्त जीवों का स्वामी कहा गया है वे सूर्य गोलक के तुल्य है और सारे जीव सूर्य की किरणों के अणु के तुल्य है सृष्टि के पूर्व भगवान के अस्तित्व की पुष्टि श्रुतियों द्वारा हुई है वासुदेवो वा इदम् अग्र आसीद न ब्रह्म नश्च शंकरः एको वै नारायण आसीन ब्रह्मा नेशानाम क्योंकि प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत है वे सदैव अकेले अद्वय रूप में विद्यमान रहते हैं इस तरह विद्यमान रह सकते हैं क्योंकि वे सर्व संपूर्ण तथा सर्वशक्तिमान हैं उनके अतिरिक्त हर वस्तु यहाँ तक कि उनके स्वांश विष्णु तत्व भी उनके अंश है सृष्टि के पूर्व न तो कारणों दर्शाए विष्णु थे न गर्भो दर्शाए विष्णु या क्षीरो दर्शाए विष्णु या ब्रह्मा अथवा शंकर ही थे विष्णु तत्व तथा ब्रह्मा इत्यादि सारे जीव भिन्नांश है यद्यपि आध्यात्मिक जगत भगवान के साथ था किंतु भौतिक जगत उनमें सुसुप्त था केवल उनकी इच्छा से भौतिक जगत बनता है बनता तथा बिगड़ता है वैकुंठ लोक की विविधता भगवान से एकाकार है जिस तरह सैनिकों की विविधता राजा से तदाकार होती है जैसा कि भगवद गीता में बतलाया गया है भौतिक सृष्टि भगवान की इच्छा से होती है और सृष्टि तथा प्रलय के कुछ अंतराल के बीच की अवधियों में जीव तथा भौतिक शक्ति उनमें सुषुप्त रहते हैं ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलय तम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतिसे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस् तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधुं वर्गे नवाकल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमार्थो महाश्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परः जन्मादस्य तुर्निरा वितरता चार्थेष्वभिज्ञस्वरार्तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्रातिसर्गोमिषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः हरे कृष्ण तो इस द्वादशी के पवित्र तिथि में आप सभी भक्तों का प्रातःकालीन भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत है। तो श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के पांचवें अध्याय की चर्चा चल रही है, 23वें श्लोक का। तो ये पांचवें अध्याय जिसका नाम है मैत्रेय से विदुर की वार्ता, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है। विदुर और मैत्रेय जी का संवाद, दो भक्तों का जो संवाद है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि हम प्रसंग से परिचित हैं क्योंकि तो हम डेली इस प्रसंग को सुन रहे हैं, तो जिस प्रकार से हमने देखा कि विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास पहुँचे हुए हैं और मैत्रेय मुनि के पास पहुँचने के बाद उन्होंने मैत्रेय मुनि से बहुत सारे प्रश्न किए और प्रश्न करने के पश्चात मैत्रेय मुनि ने उत्तर देने प्रारंभ करने से पहले वो विदुर जी के बारे में या उनके जन्म उनके विषय में कुछ उनकी महिमा को गायन करते हैं। विदुर जी के कुछ श्लोक में मैंने देखा जो कि परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज ने बहुत सुंदर तरीके से दो तीन दिन में बहुत सुंदर विदुर के बारे में लिया उन्होंने, जो कि मैत्रेय मुनि विदुर के बारे में बताते हैं। विशेषतः उत्तर में वह विदुर जी का बहुत ही ग्लोरीज करते हैं, उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं और विशेष करके उनको जो प्रश्न उन्होंने पूछा था उस प्रश्न की भी प्रशंसा करते हैं, जो कि सारे जीव के हित के लिए है। और यह भी बताते हैं कि विदुर जी एक कौन है, एक शुद्ध भक्त है, इस बात की भी उन्होंने चर्चा की है। और तो विदुर जी जिस मैत्रेय मुनि विदुर जी के बारे में बताते हैं कि वो भगवान के एक शुद्ध भक्त थे, यहाँ तक कि उन्होंने पिछले श्लोक में जो लास्ट श्लोक महाराज जी लिए थे वहां पे उन्होंने यह भी बता दिया कि भगवान भगवतो नित्यम, जो कि भगवान के वो नित्य पार्षद विदुर जी थे, नित्य पार्षद है भगवान के विदुर जी। और इतने महान हैं विदुर जी और उनके नित्य पार्षद होने के नाते भगवान जब अपने धाम को प्रणय कर रहे थे लीला समाप्त करके, तो उस समय जब उन्होंने उद्धव जी को कुछ ज्ञान दे रहे थे तो उस समय मैत्री मुनि वहां पे थे और विशेष करके उन्होंने विदुर जी के लिए कुछ उपदेश दिए जो कि मैत्री मुनि अभी उनको विदुर जी को सुनाने जा रहे हैं। किस प्रकार से भगवान ने विदुर को याद किया ये सारे चीजें मैत्री मुनि पहले विदुर के बारे में किस प्रकार से शुद्ध भक्त है भगवान के नित्य पार्षद है और भगवान जाते समय भी विदुर के लिए कुछ उपदेश को छोड़ के गए हैं जो कि अभी मैत्री मुनि उनको सुनाने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अभी मैत्री मुनि विदुर के प्रश्न के पूछने के बाद मैत्री मुनि अभी ये कह रहे हैं कि अतः जिस प्रकार से भगवान ने आपके लिए जो उपदेश छोड़ा हुआ है उसको उस लीला को मैं विस्तार रूप से अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैत्री मुनि आज के श्लोक से उसको विस्तार से बताने अभी जा रहे हैं। तो आज के श्लोक में कहते हैं कि इदम अग्रे आत्मानं आत्मा एक विभो आशा कहते हैं कि इदम अग्रे कि इस जगत के सृष्टि के पूर्व इदम मतलब इस जगत और अग्रे मतलब सृष्टि के पूर्व कौन सी सृष्टि के पूर्व इस सृष्टि के पूर्व इदम अग्रे आत्मानं कि इस जगत की सृष्टि के पूर्व आत्मानं जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री राधा गोविंद जी की जय श्री गौर निताय की जय श्री प्रभुपाद की। तो आज के श्लोक में मैत्री मुनि भगवान के उन लीलाओं का विस्तार से वर्णन करते हुए पहले आज के पहले श्लोक में वह कहते हैं कि इदम अग्रे आत्मानाम आत्मा एक विभु आशा कहते हैं कि इदम अग्रे इस जगत के सृष्टि के पूर्व ये जो जगत है इस सृष्टि के पूर्व आत्मा नाम अर्थात सभी आत्माओं के आत्मा अर्थात सभी आत्माओं के आत्मा कौन एक विभु कहते हैं कौन सा वो विभु वो है परमात्मा। तो इदम अग्रे आत्मा नाम आत्मा एक विभु आशा कहते हैं कि इस जगत के सृष्टि के पूर्व आत्मा नाम सभी आत्माओं के आत्मा एक विभु जो कि परमात्मा श्री हरि विद्यमान थे इस बात को मैत्री मुनि बता रहे हैं और प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं कि इस परम पुरुष को कौन से परम पुरुष जो सभी आत्माओं के आत्मा है कौन सा विभु परमात्मा कि इस परम पुरुष को विभिन्न नामों से उपलक्षित किया जाता है ये आज का श्लोक है जो कि मैत्री मुनि विशेष करके मैत्री मुनि आज भगवान के द्वारा जो सृष्टि है उसको भी वर्णन करना प्रारंभ किए हैं मैत्री मुनि। तो दो प्रकार के सृष्टियां हम जानते हैं कौन सा स्वर्ग और विसर्ग जैसे कि श्रीमद् भागवतम के पिछले स्कंद में दूसरे स्कंद के दसम अध्याय के पहले श्लोक में जहाँ पे 10 विषय वस्तुओं का वर्णन है अत्र सर्ग विसर्ग स्थानम पोषण उतय मनवंतर ऐसानुकथा निरोधा मुक्ति आश्रय वहां पे अत्र सर्ग विसर्ग ये दो प्रकार की सृष्टि का वर्णन हुआ है। सर्ग अर्थात कौन सी सृष्टि जो भगवान के द्वारा सृष्टि है और विसर्ग अर्थात जो ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि है मतलब हमारी जो सृष्टि है हम लोग जिससे उत्पत्ति हुए कौन सी सृष्टि है विसर्ग है। तो लेकिन दो प्रकार की सृष्टि है लेकिन मैत्री मुनि यहाँ पे जो वर्णन कर रहे हैं वह है सर्ग सृष्टि का जो भगवान के द्वारा जो सृष्टि की गई है उसका वर्णन करते हैं यहाँ पे मैत्री मुनि। हालांकि पिछले स्कंद में संक्षिप्त रूप से इस सर्ग सृष्टि की व्याख्या हुई है स्वयं भगवान करते हैं इसकी व्याख्या विशेष करके जैसे कि प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के शुरुआत में ही लिखते हैं कि यहाँ पर महर्षि मैत्री मुनि भागवत के चार आदि श्लोकों की व्याख्या प्रारंभ करते हैं जो चतुर्श्लोकी भागवत के रूप में जाना जाता है उसकी व्याख्या शुरू करते हैं यहाँ पे। तो इसकी व्याख्या एक्चुअली संक्षिप्त रूप से पिछले अध्याय में हो चुकी है। पिछले अध्याय में हमने वहां पे देखा कि जब ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे जैसे ही ब्रह्मा जी का जन्म हुआ गर्भोदक्षाय विष्णु उस कमल नाभि से जब ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो उस समय ब्रह्मा जी की उत्पत्ति क्यों हुई थी सृष्टि करने के लिए प्रजा की उत्पत्ति करने के लिए। लेकिन ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होने के बाद ब्रह्मा जी बिल्कुल उनको पता ही नहीं था मुझे क्या करना है कैसे करना है कुछ भी पता नहीं था उनको कि उनकी उत्पत्ति क्यों हुई है ये उनको ज्ञात था क्योंकि उत्पत्ति सृष्टि करने के लिए हुआ है बट कैसे करना है किस प्रकार से करना है ये सारी चीजें बिल्कुल उनको पता नहीं था। तभी उस समय उनको एक शब्द सुनाई दिया कौन सा शब्द तपः। तपः जब शब्द सुनाई दिया तो उस समय ब्रह्मा जी तपस्या में लग गए। तो ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे और तपस्या करते 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 और बाद में क्या हुआ, उस तपस्या से उनको भगवत दर्शन हुआ, भगवान का दर्शन हुआ, भगवान ने साक्षात उनको दर्शन दिया। और यहाँ तक वर्णन है कि भगवान ने दर्शन देकर ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी से हाथ मिलाए, मुस्कुराते हुए। इस श्लोकों में वर्णन है कि ब्रह्मा जी से मुस्कुराते हुए भगवान ने हाथ मिलाया, हाउ आर यू ब्रह्मा। जैसे मान लीजिए हम भजन साधन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं और कभी घर से बाहर निकलते ही गेट जैसे ही खोला भगवान सामने खड़े हो तो कैसा प्राण निकल जाएगा हमारे, तो है ना। तो ब्रह्मा जी को साक्षात दर्शन दिया था भगवान ने और मुस्कुराते हुए उनसे हाथ मिलाया था ब्रह्मा जी ने, भगवान ने ब्रह्मा को। तो बहुत ही उनके ऊपर कृपा करते हुए ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान ने दर्शन दिया। और दर्शन देने के पश्चात ब्रह्मा जी को कहते हैं कि हे ब्रह्मा, कहते हैं कि त्वयि कर्म विमोहिते तत्र मयम् प्रत्यादिष्टम्। कहते हैं कि ब्रह्मा, भगवान दर्शन देते हुए ब्रह्मा जी को एक चीज क्लियरिफिकेशन देते हैं सबसे पहले कि त्वयि कर्म विमोहिते तत्र मयम् प्रत्यादिष्टम्, कि त्वयि कर्म विमोहिते, हे ब्रह्मा जब तुम कर्म विमोहिते, जब तुम कर्म के प्रति बिल्कुल विमोहित थे, जब तुम्हारी बुद्धि पर काम नहीं कर रहे थे, तो उस समय तत्र मयम् प्रत्यादिष्टम्, प्रत्यादिष्टम अर्थात आदेश, उस समय जो तप शब्द बोला गया था उस समय वो जो आदेश था वो मैंने ही तुमको दिया था। ये बात का क्लियरिफिकेशन भगवान प्रकट होने के बाद करते हैं ब्रह्मा जी के बाद कि जब तुम कर्म के प्रति विमोहित थे, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, तो उस समय जो तप शब्द का ध्वनि उनको सुनाई दिया और जो तप शब्द को तुम लेकर तपस्या करना प्रारंभ किए और मुझे प्राप्त किया, वो जो तप शब्द बोला था वो तत्र मयम् प्रत्यादिष्टम्, वो आदेश मैंने ही दिया था। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी को भगवान ने कृपा करते हुए उनको दर्शन दिया और दर्शन देने के पश्चात भगवान कहते हैं कि अभी ब्रह्मा जी आप कुछ मांगो, बोलते हैं। देखिए अभी जब भगवान की दर्शन हो जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाता है, तो और कुछ मांगने के लिए बचता नहीं है एक्चुअली में। क्या और क्या मांगने के लिए बचा, जब साक्षात भगवान का दर्शन हो गया, भगवान की प्राप्ति हो गया, तो और क्या मांगने के लिए बचा। लेकिन फिर भी वहां पे भगवान बोलते हैं कि ब्रह्मा जी कुछ मांगो। हालांकि ब्रह्मा जी को कुछ नहीं मांगना था, क्योंकि साक्षात भगवत प्राप्ति हो चुका है। जैसे कि ध्रुव महाराज अपने अंदर इच्छाओं, बहुत सारी इच्छाओं को लेकर भगवान के पास तपस्या किया था, लेकिन जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए तब कहने लगे काचम विचित्रम, कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सारे चीजें कांच की समान है। और हालांकि बहुत सारे संपत्ति, बहुत बड़ा राजपाट की इच्छा को लेकर आए थे, लेकिन जब भगवान का दर्शन हो गया तो सारी इच्छाएं खत्म हो गई। इससे ये पता चलता है कि अगर मन के अंदर बहुत सारे इच्छाएं भी हैं तो भी हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की ही भजन करना चाहिए। क्योंकि जब भगवान का अनुग्रह होता है तो भगवान का अनुग्रह होते ही जो भी इच्छाएं हमारे अंदर रहती है वो समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे हालांकि ब्रह्मा जी को दर्शन प्राप्त हो चुका था भगवान का, लेकिन फिर भी भगवान बोलते हैं कुछ मांगो। तो उस समय ब्रह्मा जी ने बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज मांगा भगवान से। एक्चुअली ये जो मांगा ब्रह्मा जी ने हम भक्तों के लिए बहुत ही सुंदर विषय है। अगर हमको अपने जीवन काल में कभी भी गुरुजनों और वैष्णवों से या भगवान से कभी ऐसा मौका मिले कि कुछ मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो, तो उस समय हमको इस ब्रह्मा जी ने भगवान से क्या मांगा उसको याद करना चाहिए हमेशा। जब किसी वैष्णव, साधु, गुरु या भगवान का अनुग्रह जब हमारे जीवन में कभी भी ऐसा लगे कि प्राप्त हुआ है, तो उस समय जब हमको मांगने की बात सोचनी चाहिए तो हमको ब्रह्मा जी को याद करके हमको मांगना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर चीज मांगा भगवान से। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अनुग्रह करके मुझे तो दर्शन दे दिया, मैं इस संसार का प्रथम जीव हूं, इस आपके सृष्टि का प्रथम जीव हूं, तो आपने मुझे दर्शन दे दिया और साथ साथ आपने मुझसे हाथ भी मिलाया, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से अभी क्या करूंगा, मैं आगे सृष्टि करना प्रारंभ करूंगा। तो एक तो आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, साक्षात दर्शन दिया, और आपकी कृपा से मैं उत्पत्ति करना शुरू कर दूंगा। तो इन दो चीजों को लेकर मेरे बुद्धि के अंदर कभी भी अहंकार न आए। अगर आप देना ही चाहते हैं मुझे, तो ये अहंकार रूपे जो असुर है कभी भी हमारे अंदर ना ऐसी मेरे ऊपर कृपा करिए, ये चीज ब्रह्मा जी वहां पे मांगते हैं। क्योंकि वास्तव में जब हमारे जीवन के अंदर ऐसे विशेष साधुओं का या गुरुजनों का जब कृपा होता है तो कभी कभी हम उस कृपा को लेकर, हाँ बड़े व्यक्ति का कृपा होता है तो उस कृपा को लेकर हमारे अंदर बहुत सारे अहंकार आ जाते हैं कि देखो हमारे गुरुजन का, गुरुदेव का हमारे ऊपर बहुत विशेष कृपा है, और इसको लेकर अहंकारित हो जाते हैं और इसको प्रकटित भी करते रहते हैं कि हमारे ऊपर कितना देखो कृपा हुआ, मैं कितना अच्छा वैष्णव हूँ, इस प्रकार के ये अहंकार आ जाता है हमारे अंदर। तो ब्रह्मा जी ये अहंकार ना आए करके ये आशीर्वाद भगवान से मांगते हैं कि आप देना ही चाहते तो कुछ ऐसी चीज दीजिए। क्योंकि स्वाभाविक है कि कोई बड़े व्यक्ति कोई किसी से हाथ मिलाता है, जैसे मान लीजिए कोई मोदी किसी से हाथ मिलाया, हाँ किसी के साथ उसका फोटो हो गया, तो क्या करते लोग उस फोटो को फ्रेम बनाकर अपने ऑफिस में लगाते हैं, है ना और दिखाते हैं कि देखो मैं मोदी को मिला था। कुछ दिन पहले बॉम्बे में वार्किटेक के साथ जो मीटिंग था, तो अभी ये शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन बाद जब हम लोग गए थे, तो वहाँ पे जो आर्किटेक्ट था वो अपने मोबाइल में सब देखा, क्योंकि वो शपथ ग्रहण समारोह में गया हुआ था और वो राष्ट्रपति के साथ उस भवन में खा रहा है, सब लंच करा, सारा फोटो एक एक कर, सारी चर्चा छोड़ के पहले वही सब दिखा रहा है, देखो मैं करके गया था। तो स्वाभाविक है लोगों को बड़े व्यक्ति से जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, वो सब प्रकटित करते हैं। तो ब्रह्मा जी इसी चीज को मांग रहे हैं कि प्रभु आपकी अनुग्रह हुई मेरे ऊपर, आपने दर्शन दिया मुझे, आपने कृपा किया और आपकी कृपा से मैं सृष्टि भी प्रारंभ कर दूंगा, सृष्टि करना भी प्रारंभ कर चुका, प्रजा की उत्पत्ति भी शुरू कर दूंगा, तो कभी भी मेरे अंदर ये अहंकार रूपी असुर ना आए, ऐसी आप मेरे ऊपर कृपा करिए। तो ये ब्रह्मा जी बहुत बहुत विशेष चीज मांगते हैं भगवान से। देखिए यही कारण है कि ब्रह्मा जी को कभी भी इतना सृष्टि करने के बाद भी अहंकार नहीं था। एक बार अहंकार आया था ब्रह्मा जी को, इसमें दो चीज है, एक तो भगवान की इच्छा थी और दूसरा देखिए अहंकार आता है तो क्या होता है, क्योंकि ब्रह्मा इस चीज को जानते थे कि अगर व्यक्ति के अंदर अगर अहंकार रूपी असुर आकर घर बना के बैठ लिया तो निश्चित रूप से उसका 101% पतन पक्का है। इस चीज को ब्रह्मा जी जानते थे। उस समय की बात है कि जब ये संसार में जब असुरों का दबदबा जब बढ़ गया, तो उस समय जब भगवान के प्राकट्य के लिए सारे देवी देवता मिलकर, ब्रह्मा सहित सारे देवी देवता लोग मिलकर क्षीर सागर पर जाकर जब भगवान की प्रार्थना किया, तो उस समय भगवान प्रकट हुए, भगवान की वाणी प्रकट हुई और वाणी प्रकट होकर क्या बोलते हैं भगवान की, तुम लोग निश्चिंत रहो, मैं बहुत जल्दी प्रकट होने वाला हूँ देवकी के गर्भ से। तो उस समय भगवान ने उन देवताओं को, सारे देवी देवताओं को निश्चित कर दिया और यह आदेश दे दिया कि तुम जाओ और अलग अलग जगह पे अपनी अपनी सेवाओं को स्वीकार कर लो, मैं बहुत ही जल्दी आने वाला हूँ, हाँ इस भौम जगत में तुम लोग जाकर अपनी अपनी सेवा में लग जाओ, पहले से प्रकट हो जाओ और मैं बहुत ही जल्द प्रकटित होने वाला हूँ। तो इस प्रकार से जब सांत्वना दे दिया भगवान ने सारे देवी देवताओं को, तो उस समय सारे देवी देवताओं को उसमें से जो प्रमुख ब्रह्मा जी और इंद्र जितने लोग लीडर्स लोग थे ना, उन्होंने सारे देवी देवताओं को भेज दिया कि जाओ जाओ अपने सब सेवा में लग जाओ, भगवान बहुत जल्दी आने वाले हैं, हाँ सबको सेवा में भेजकर क्या किए, अपने खुद सेवा में नहीं लगे। और जाकर कहते हैं कुछ भक्त लोग ऐसा कि वो जाकर ऑफिस में यार सोफे पे जाकर सो गए। यही कारण था कि हम एक लीडर होके सबको सेवा में लगाकर और वो जाकर खुद बैठ गए, यही कारण था कि वो ब्रह्म विमोहित लीला में फंस गए। दोनों लोग फंसे, इंद्र भी फंसे और ब्रह्मा जी भी फंसे। एक भगवान की इच्छा भी थी, वो भगवान प्रकट भी करना चाहते थे, एक लीला थी, लेकिन फिर भी एक कारण है कि वो सबको सेवा में लगाकर वो खुद जाकर बैठ गए, तो विमोहित हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी इस बात को जानते थे यहाँ पे कि मैं सृष्टि करूंगा और भगवान ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया तो मेरे अंदर कभी अहंकार न आ जाए, ये ऐसी आपके आप मुझसे कृपा करिए। तब भगवान ब्रह्मा जी से बहुत प्रसन्न हुए। जब ये चीज भगवान से मांगा ब्रह्मा जी ने तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भगवान प्रसन्न होकर उस समय ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत बताते हैं। पिछले अध्याय में जो हमने सुन चुके संक्षिप्त में चतुर्श्लोकी चारों श्लोक को भगवान खुद अपने मुखारविंद से ब्रह्मा जी को सुनाते हैं, खुश होकर कि ब्रह्मा जी ने इस प्रकार का ये वर मांगा, खुश होकर उसमें चतुर्श्लोकी को उन्होंने बताया। तो यहाँ पे दूसरे स्कंद में संक्षिप्त रूप से इस चतुर्श्लोकी का व्याख्या हो चुका है, लेकिन अभी आज के श्लोक से मैत्रेय मुनि अभी उसी की व्याख्या विस्तार से करने जा रहे हैं। आज के श्लोक से वो प्रारंभ किए, तो भगवान के जो स्वर्ग भगवान द्वारा जो सृष्टि है उसकी व्याख्या आज के श्लोक से मैत्रमुनि प्रारंभ करते हैं। तो अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं थोड़ा उसके ऊपर हम विचार विमर्श करते हैं कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या लिखा है। मैंने तात्पर्य को बहुत बार पढ़ा एक्चुअली थोड़ा बहुत एकदम तात्विक चर्चा है जो कि मेरे बुद्धि के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसको बार बार पढ़ा प्रभुपाद जी के तात्पर्य को, और बार बार पढ़कर मैंने प्रभुपाद जी ने क्या चीज को बताया है वो चीज मैं एक बार वो बताता हूँ। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में सबसे पहले तात्पर्य के मैं वह इस बात को बताते हैं कि महर्षि अभी चतुर्श्लोकी भागवत की व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं मैत्रेय मुनि, इस बात को प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में। और उसके बाद प्रभुपाद जी ने मायावाद का खंडन किया, प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में मायावाद का खंडन करते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं कि मायावादी लोग काल्पनिक व्याख्या करते हैं किसके ऊपर, इस अहम ये चतुर्श्लोकी का जो चतुर श्लोक है उसमें अहम शब्द की व्याख्या अपने मनोकाल्पनिक विचारधारा से करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पे कि हालांकि ये जो मायावादी है इनको श्रीमद् भागवत को इतना पहुंच नहीं रहता है, वो इतना जानते नहीं है, फिर भी श्रीमद् भागवत का जो एक चतुर्श्लोकी है इसको व्याख्या वो अपने मनोकाल्पनिक धारा से वो इसकी व्याख्या करते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। विशेष करके इस अहम शब्द की व्याख्या जीव से करते हैं कि अहम मतलब जीव, लेकिन यहाँ पे अहम शब्द भगवान स्वयं अपने आप को बता रहे हैं क्योंकि भगवान स्वयं इस चतुर्श्लोकी को ब्रह्मा जी को बताया है। तो प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं कि मायावादी जो लोग हैं एक काल्पनिक व्याख्या करते हैं और ये जो व्याख्या है पूर्ण रूप से क्या है, गलत व्याख्या है। और प्रभुपाद जी यह भी बताते हैं कि असली व्याख्या क्या है, यहाँ पे जो मैत्रेय मुनि कर रहे हैं जो कि साक्षात भगवान भगवत धाम जाते समय जो उपदेश दिया था उद्धव को सुनाए थे, तो यहाँ पे असली व्याख्या जो है मैत्रेय मुनि करते हैं, इस बात को प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं। तो हमको इस असली व्याख्या को सुनना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए, है कि नहीं। तो और आगे प्रभुपाद जी अहम शब्द का असली व्याख्या को बताते हैं प्रभुपाद जी कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए आया है। ये अहम शब्द जो है वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के लिए आया है और सृष्टि के प्रारंभ में अहम शब्द इंगित करता है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान थे, जैसा कि आज के श्लोक में कहा गया है। आज के श्लोक में क्या कहा गया है कि इदम अग्रे आत्मानाम आत्मा एक विभु आस है, सृष्टि के पूर्व सभी आत्माओं के आत्मा भगवान श्री हरि विद्यमान थे, इस अहम शब्द की व्याख्या है। तो सृष्टि के प्रारंभ में प्रभुपाद जी यह भी लिखते ना कोई पुरुषावतार थे, ना तो कारण दक्षाय विष्णु, ना तो चिरो दक्षाय विष्णु, ना तो गर्भो दक्षाय विष्णु, ना तो ये भौतिक प्रकृति थे, ना तो जीव थे और ना ही ब्रह्मा थे और ना ही शंकर। यहाँ पे एक श्रुति का एक श्लोक भी उद्धरण करते हैं प्रभुपाद जी, वासुदेवो वा इदम अग्रे आसित न ब्रह्मा न च शंकर, ना तो ब्रह्मा थे और ना शंकर थे, और सारे जीव भौतिक प्रकृति और भगवान के थे, लेकिन कहां पे थे, भगवान के अंदर थे, सुसुप्त अवस्था में भगवान के अंदर थे। इस बात का वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी कि इस सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टि के पूर्व ये भौतिक जगत भौतिक प्रकृति सारे जीव सुसुप्त अवस्था में भगवान के अंदर थे, और सृष्टि के पूर्व कौन विद्वान थे, केवल भगवान विद्वान थे। तो ये अहम जो शब्द आया है ये भगवान के लिए आया हुआ है। एक उदाहरण भी देते हैं प्रभुपाद जी, एक उदाहरण देते हैं इस बात को पुष्टि करने के लिए कि सृष्टि के पूर्व भगवान स्वयं विद्यमान थे और उनके अंदर ये सारे जीव सारे भौतिक प्रकृति ये सारे जीव उनके अंदर ही विद्यमान थे। जैसे कि उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये उदाहरण प्रभुपाद जी ने इस अहम इस चतुर्श्लोकी के चतुर्थ श्लोक के ऊपर व्याख्या करते हुए विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर और जीव गोस्वामी पाद ने जब व्याख्या कर रहे हैं तो उस समय वहां पे ये उदाहरण देते हैं, ये उदाहरण बताते हैं कि जैसे कि कहते हैं कि हम कि एक राजा जा रहा है, राजा जा रहा है अर्थात हमको क्या समझना है, राजा अकेले नहीं जा रहा है। जब राजा जा रहा है ऐसी बातें होती है मतलब उसके साथ उसके शक्ति उसके सैनिक उसके जितने भी लोग हैं आजू बाजू के सारे लोग उनके साथ में चल रहे हैं, मतलब राजा जा रहा है मतलब वो अकेले नहीं जाता है। तो राजा जा रहा है अर्थात सारे उसके सारे शक्तियां उसके साथ में हैं, उसी प्रकार से सृष्टि के पूर्व भगवान थे, मतलब ये सारी भौतिक सृष्टि और जितने भी जीव है सब भगवान के अंदर थे। इस बात को पुष्टि करने के लिए ये उदाहरण को प्रभुपाद जी रखते हैं, जो कि अहम शब्द की व्याख्या करते हुए जीव गोस्वामी पाद और विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर वहां पे लिखते हैं, इस उदाहरण को बताते हैं, उसी बात को प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लिखा। और प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतिम चरण में भगवद गीता के एक श्लोक को बताते हैं, पुष्टि करते हैं अंतिम अंतिम कुछ लाइनों में। वो भगवद गीता के 9वें अध्याय के 7वें नंबर श्लोक को उद्धरण देते हैं प्रभुपाद जी, जिसमें भगवान कहते हैं कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पच्छे पुनस्ताति कल्पादो विसृज्याम्यहम्। भगवान कहते हैं हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी कल्पच्छे, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। जब कल्प का अंत इस सृष्टि का विनाश होता है, अंत होता है, तो सारे जीव क्या है वह मेरे अंदर समाहित हो जाते हैं। और जब कल्प का प्रारंभ होता है, सृष्टि का प्रारंभ होता है, तो सारे जीव वहां पे वापस। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि मेरी इच्छा मात्र से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जो थे सब मेरे में अंदर समाहित हो जाते हैं, और मेरी इच्छा करने मात्र से सारे प्रकट हो जाते हैं। इस बात की पुष्टि यहाँ पे प्रभुपाद जी इस श्लोक को अपने तात्पर्य में अंतिम चरण में वह लिखते हैं। तो सार यही है, देखिए कि सृष्टि के प्रारंभ में केवल कौन थे? भगवान थे। इस बात को यहाँ पे पुष्टि किया जा रहा है अलग अलग तरह से, कि सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान ही थे। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में इस बात को पुष्टि करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक उद्धरण को प्रस्तुत करते हैं चेतन चैतन्य के मध्य लीला के 25वें अध्याय में। उस अध्याय का नाम है वाराणसी के सारे निवासियों को का वैष्णव बनना, बनारस के सारे निवासियों का वैष्णव बनना, जितने भी मायावती सब वैष्णव बनते, किसके कृपा से? चेतन महाप्रभु की कृपा से। एक अध्याय है पूरा, बहुत बड़ा अध्याय है। तो वहां से उद्धरण देते इस बात, ये अहम शब्द को समझाते हुए और सृष्टि के प्रारंभ में भगवान स्वयं थे करके इस बात को समझाने के लिए कविराज गोस्वामी वहां पे उद्धरण देते हुए कहते हैं कि उस समय की बात है जब श्री चैतन्य महाप्रभु वह वाराणसी पहुंचे, और उस समय वहां पे उन्होंने प्रकाशानंद सरस्वती के साथ जो उनकी वार्तालाप हुई, प्रकाशानंद सरस्वती एक मायावादी सन्यासी थे, और उस वार्तालाप में तर्क करते हुए दोनों के बीच में बहुत तर्क हुआ, और उस समय प्रकाशानंद सरस्वती पराजित हो जाते हैं। वो मायावादी सन्यासी थे लेकिन बाद में भक्त बन जाते हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो प्रकाशानंद सरस्वती को भक्त बनाने के पश्चात, उनको पराजित करने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु गंगा स्नान किए, और चैतन्य महाप्रभु जाकर बिंदु माधव का दर्शन, वहां पे बिंदु माधव टेम्पल है, वहां पे जाकर चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने लगे। तो उस समय प्रकाशानंद सरस्वती उस समय अन्य बहुत सारे भक्तों के साथ मिलकर वह श्री चैतन्य महाप्रभु उस समय बिंदु माधव में मंदिर में दर्शन कर रहे थे, और दर्शन करके जैसे ही बाहर निकल रहे थे उसी समय प्रकाशानंद सरस्वती अन्य भक्तों के साथ पहुंचकर और साक्षात चैतन्य महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किए, और उनसे क्षमा याचना करने लगे कि मैंने आपके साथ तर्क किया और मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मैं आपको समझ नहीं पाया था, कृपा करके मेरे ऊपर कृपा करिए। और इस प्रकार से उनके शरणागत हो गए, और उन्होंने बहुत ही नम्रतावश होकर प्रकाशानंद सरस्वती ने चैतन्य महाप्रभु से भक्ति विषयक तत्वों को बात करने के चर्चा करने की बात कही। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर रूप से भक्ति विषयक तत्वों को उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उपदेश देते हैं प्रकाशानंद सरस्वती को, और साथ में यह भी बताते हैं कि श्रीमद् भागवत जो है वेदांत सूत्र की सही व्याख्या है। ये प्रस्तुत करते हैं कि श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र की सही व्याख्या है, प्रकाशानंद सरस्वती को बताते हैं, और प्रस्तुत करते हैं चैतन्य महाप्रभु अंत में कि वहां पे एक तो ये बताते हैं, प्रस्तुत करते हैं कि श्रीमद् भागवत जो है वेदांत सूत्र का सही व्याख्या है, और वहां पे बहुत सुंदर तरीके से उस श्रीमद् भागवत के इस चतुर्थ श्लोकी जिसका व्याख्या अभी प्रारंभ कर रहे हैं मैत्रेय मुनि,
इस श्रीमद भागवत के चतुर्थ श्लोकी की व्याख्या उसमें चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती और भी जितने बनारस के सारे मायावादी और भी दूसरे लोग थे उनके सामने चतुर्थ श्लोकी भागवत को श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, और यही कारण है कि वहां पे सारे मायावादी जो थे वो वैष्णव बन गए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस चतुर्थ श्लोकी भागवत को वहां पे बहुत सुंदर तरीके से प्रकाशानंद सरस्वती और उनके अन्य दूसरे शिष्य और दूसरे वहां पे मायावादी जितने भी लोग थे उनको उन्होंने सुनाया। तो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो ये चतुर्श्लोकी भागवत था इसी को चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी रखते हैं, और वो चतुर्श्लोकी के ऊपर तो रखते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी वहां पे वर्णन है मध्य लीला में 25वें अध्याय में कि सृष्टि पूर्वे षडश्वरे आमित हैवे प्रपंच प्रकृति पुरुष आमि तेई लये, कि सृष्टि के पूर्व षडश्वरय आमित है ये, सृष्टि के पूर्व षड अश्वर्य से परिपूर्ण मैं ही था। सृष्टि पूर्वे षडश्वरय, जैसे यहाँ पे मैत्री मुनि इस श्लोक में बता रहे हैं ना कि सृष्टि के पूर्व कौन आत्माओं के आत्मा परमात्मा भगवान उपस्थित थे, इसी बात को वहाँ पे चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी यहाँ पे रखते हैं इस बात को कि सृष्टि पूर्व सदस्वर आमित है वे, कि सृष्टि के पूर्व सदस्वरों से पूर्ण मही था वहां पे, और प्रपंच प्रकृति पुरुष आमित ही लिए, कि ये जो प्रपंच है जो भी दृष्टिगोचर दिख रहा है सृष्टि या फिर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से जो भी कुछ दिख रहा है ये सारे जितने भी पुरुष जीव मुझ में ही लीन थे। प्रपंच प्रकृति पुरुष आमते ही लिए, ये सारे प्रपंच सारे प्रकृति पुरुष जो भी थे सब मेरे में लीन थे। और आगे कहते हैं कि सृष्टि करितार मध्य आमित बसवे, और सृष्टि करने के बाद, हालांकि सृष्टि से पूर्व की बात पहले बताते हैं कि सृष्टि के पूर्व ये सारे लोग मेरे में थे, और सृष्टि करितार मध्य आमित है वे, कि सृष्टि के बाद जब सृष्टि कर दिया, यहाँ पे सर्ग सृष्टि की जो चर्चा चल रही है, सृष्टि भगवान जो सृष्टि करने के बाद, ऐसा नहीं कि भगवान वहां पे नहीं है, सृष्टि करने के बाद भी तार मध्य आमित अभी मैं ही जाके वहां पे बसा हूँ, सृष्टि करने के पूर्व मैं था और सृष्टि करने के बाद भी मैं वहां पे बसा, और प्रपंच यही देख सब से ही अमे है कि जितने भी दृष्टिगोचर है या यदि शक्ति और उसमें सब सब में मैं हूँ, जो भी कुछ दृष्टिगोचर होता है इस भौतिक संसार में इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है सब में भगवान की शक्ति है। इसलिए कहते हैं ना कि हर एक वस्तुओं को जब हम देखते हैं उसमें भगवान की शक्ति को देखने का ये अनुभव करना चाहिए, चाहे वो कुछ जड़ हो चाहे चेतन हो, सारे में भगवान की शक्ति है। बिना भगवान की शक्ति से कोई भी चीज चलायमान नहीं हो सकती, कोई भी चीज टिक ही नहीं सकती है, चाहे अचेतन ही क्यों ना हो वो टिक नहीं सकता अगर भगवान की शक्ति उसमें नहीं हो। तो इसी बात को बताते हैं कि सृष्टि के पूर्व तो मैं ही था उसमें बसा मैं ही था, और बाद में सृष्टि होने के बाद भी उसको चलायमान करने के लिए मैं ही वहां पे उपस्थित हूं। और आगे कहते हैं कि प्रलय अवशिष्ट आमी पूर्ण है ये, कि प्रलय के समय अपने में परिपूर्ण होकर केवल मैं ही बचा रहता हूँ, सब कुछ अपने में समेट लेता हूँ और मैं ही बचा रहता हूँ, और प्राकृत प्रपंच है यह पाया आमाते ही लइए, कि और जितने भी ये प्राकृत प्रपंच है सब प्रलय के समय मेरे में विलीन हो जाते हैं। तो इस बात को कहते हैं, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस चतुर्श्लोकी का चतुर्श्लोक जो है अहमेव समावेग्रे इसको बताते हुए वहां पे लिखते हैं कि अहमेव श्लोके अहम तीन बार, उस श्लोक में अहम तीन बार आया हुआ है, अहमेव पश्चात अहम सोस्मि अहम, ये तीन बार आया हुआ है। तो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि अहमेव श्लोके अहम तीन बार, अहम तीन बार आया हुआ है, मतलब जोर दिया जा रहा है। क्या जोर दिया जा रहा है? जैसे कि किसी बात को प्रस्तुत करना रहता है ना, जैसे ऑर्डर 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 है, तीन बार बोला जाता है। यहाँ तक कि वो श्लोक है ना हरिनाम का, हरिनाम ही केवल हम इस कलयुग में हरिनाम 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 के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं, नास्ते व न गतिरन्य था। तीन बार जोर दे के बोला गया हरे नाम कल, इसी बात को यहाँ पे बता रहे हैं कि अहमेव श्लोके अहम तीन बार हुआ है, और जिससे प्रकृति क्या 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 पता चलता है कि पूर्ण ऐश्वर्य विग्रहेर स्थिति निर्धार है, कि वह उसमें यह पता चलता है कि छह ऐश्वर्य से परिपूर्ण विग्रह परम पुरुष श्री भगवान की स्थिति का निर्धारित होता है यहाँ पे, जोर दे के बताया गया है। और ये विग्रह नहीं माने निराकार, इस बात को निराकारवादी लोग नहीं मानते हैं, निराकारवादी बिल्कुल नहीं मानते हैं। देखिए चेतन महाप्रभु ने वहाँ पे निराकारवादी मायावादियों को उनका खंडन करते हुए उन्होंने वहाँ पे उनको भक्त बना दिया, और उसी बात को, उसी चेतन महाप्रभु के मोमेंट को आवेग बढ़ाने के लिए श्री प्रभुपाद जी ने क्या किया, उसी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी हमेशा, इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा अपने तात्पर्यों में इस मायावादी और निर्विशेषवादी को हमेशा खंडन करते हैं। खंडन करते का तात्पर्य यह है कि उनको, उनके ऊपर कृपा करके उनको भक्त बनाना चाह रहे हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने उनका खंडन करते हुए उनको चतुर्श्लोकी भागवत सुनाया और वेदांत सूत्र का असली व्याख्या जो श्रीमद् भागवत है उनको समझाया और उनको भक्त वैष्णव बना दिया। इसी मूड को लेकर प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, और इसलिए उनके सारे तात्पर्य विशेष करके भगवद्गीता में तो ऑलमोस्ट सारे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कहीं ना कहीं इस निर्विशेषवादी और मायावादी को खंडन किया है, इसलिए उनके प्रणाम मंत्र में आता है निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो ए विग्रह नाही माने निराकार माने तारे तिरस्करी वारे करिला निर्धारणे, कि जो लोग श्री भगवान के श्री विग्रह को न मानकर उन्हें निराकार मानते हैं उनके तिरस्कार करने के लिए ही तीन बार अहम शब्द को बताते हैं। यहाँ पे तीन बार अहम शब्द बताया गया है। तो इस प्रकार से तो अलग अलग अभी शुरुआत के है मैत्रेय मुनि इस श्लोक में इस सर्ग सृष्टि की को विस्तृत व्या तो इस प्रकार से मैत्रेय मुनि अभी आज के श्लोक से वो भगवान के सर्ग सृष्टि की विस्तृत रूप से व्याख्या प्रारंभ करते हैं, और प्रारंभ करते करते वह अलग अलग तत्वों को अभी आगे से बताना प्रारंभ करेंगे, और आगे चलकर वह जब देवताओं की उत्पत्ति के बारे में, क्योंकि मैंने इस अध्याय को थोड़ा पूरा पढ़ा क्योंकि शुरुआत में तो बहुत तात्विक चर्चा ही थी एक्चुअली, मैं प्रिपरेशन किया बोलने के लिए लेकिन आत्मसंतुष्टि एकदम से नहीं हुआ मुझे, जो भी मैंने प्रिपरेशन किया वो चीजें मैंने बताया, अलग अलग जगह से चतुर्श्लोकी भागवत जो श्लोक है उसके ऊपर जो भी टीका हुआ सारी चीजों को पढ़ा मैंने कई, लेकिन आत्मसंतुष्टि न मिलने के कारण इस अध्याय को मैं आगे पढ़ते गया तो लगभग 30 अध्याय के बाद 30वें श्लोक के बाद जब देवताओं की उत्पत्ति होती है तो एक्चुअली मैं इसलिए बता रहा हूँ आत्मसंतुष्टि के लिए थोड़ा से 5 मिनट के लिए मैं अपने खुद की तुष्टि के लिए इसको मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैत्रेय मुनि जब इस बात को बताते हैं कि जब देवताओं की उत्पत्ति होती है, जैसे कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज थे और तपस्या करने लगे और भगवान ने दर्शन दिया, उसी प्रकार से जब देवताओं की सृष्टि होता है, देवताओं की सृष्टि करते हैं भगवान, तो उस समय देवताओं को भी कुछ पता नहीं रहता है क्या करना चाहिए, तो उस समय सारे देवता लोग मिलकर भगवान की बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थनाएं मुझे बहुत सुंदर लगा, 20 श्लोक में सारे देवता लोग मिलकर भगवान के चरणों की महिमा बताते हैं और भगवान की चरणों की महिमा गायन करते हुए भगवान के विषय में बहुत सुंदर तरीके से उनका ग्लोरीज करते हैं सारे देवता लोग, देव स्तुति जिसको कहते हैं 20 श्लोक में आया हुआ है। तो वहां पे देवता लोग भगवान के चरणों की महिमा, उनका महिमा गायन करते हुए सबसे प्रथम श्लोक में वो भगवान के चरण, जो व्यक्ति भगवान का चरण का शरण ग्रहण कर लेता है वह इस संसार के भौतिक दुखों में रहते हुए भी उस सुख को प्राप्त कर सकता है, इस बात को बताते हैं। और विशेष करके भगवान के चरण में एक छत्र है, छत्र का चिन्ह है, इस बात को देवता लोग प्रथम श्लोक में स्तुति करते हुए बताते हैं कि ये जो छत्र का जो चिन्ह है भगवान के चरण में, वो छत्र से जो भी उनका शरण ग्रहण किया हुआ भक्त रहता है वो छत्र से हमेशा उन दुखों से वो रक्षा करते हैं भगवान, इस बात को देव स्तुति में देवता लोग स्तुति करते हुए बताते हैं। भगवान के चरण में, दोनों चरणों में 19 चरण चिन्ह है, इसका वर्णन रूप चिंतामणि ग्रंथ में विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर बहुत सुंदर तरीके से करते हैं। 19 चिन्ह है, दाएं चरण में 11 चिन्ह है और बाएं चरण में 8 चिन्ह है। तो दाएं चरण में एक्चुअली एक छत्र का चिन्ह है, वहां पे जो विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर वर्णन करते हैं इस छत्र को लेकर, कहते हैं कि ये संसार दुखालय है, स्टैंप लगा हुआ है, हम सबको मालूम है कि संसार क्या है, दुखों का आलय है, दुख ही दुख यहाँ पे भरा हुआ है, सुख नाम की चीज ही नहीं है, हम कितना भी प्रयास करेंगे यहाँ पे सुख नहीं मिल सकता है, ये हमको 100% पता है कि ये संसार दुखालय है। लेकिन
इस दुखालयम संसार में भी हम दुख में भी सुख की प्राप्ति कर सकते हैं अगर हम भगवान के चरण को स्वीकार कर लें, उनके चरण का शरणागत हो जाए तो निश्चित रूप से इस दुख में भी हमको सुख का अनुभव होगा। वह यही उदाहरण देते हैं कि भगवान के चरण में जो ये छत्र है वो चिन्ह यह इंगित करता है कि जो भी उनके चरण को ग्रहण कर लेगा, शरणागत हो जाएगा, वो क्या करते हैं उस छत्र से उनके उनके ऊपर जो दुख है, दुख रूपी बरसात है, वो रक्षा करते हैं। और यह उदाहरण देते हैं कि जैसे कि एक छाता हमको बारिश से बचाता है, जैसे उदाहरण देते हैं कि जैसे कि दो व्यक्ति है, वो घर से बाहर निकले और बहुत तेज बारिश हो रहा है, बारिश का मौसम है, बहुत तेज बारिश हो रहा है और घर से दो व्यक्ति बाहर निकले, एक छाता लेके निकला, एक बिना छाता का निकला। तभी देखिए बारिश दोनों के लिए हो रहा है, लेकिन जिसके पास वो छत्र है, छाता है, उसको उस बारिश से दुख का अनुभव नहीं हो रहा है, और जिसके पास छाता नहीं है उसको वो बारिश से दुख का अनुभव हो रहा है। बारिश दोनों के लिए, दुख दोनों के लिए बरस रहा है, लेकिन जिसने उस छत्र का शरण ग्रहण किया, छत्र को साथ में रखा हुआ है, उसको बारिश होने के बाद भी उसको बारिश का अनुभव नहीं हो रहा है, दुख का अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन जिसने उस छत्र का सहारा नहीं लिया है उसको उस दुख का अनुभव हो रहा है। तो ये संसार दुखालयम है, लेकिन अगर व्यक्ति भगवान के चरण, भगवान के शरणागत हो जाता है तो निश्चित रूप से इस दुख सागर में भी हमको सुख का अनुभव होगा। अर्थात एक दृष्टिकोण से यह भी कह सकते हैं कि हमको दुख में रहते हुए भी दुख का अनुभव नहीं होगा, अन्यथा हम हमेशा दुखी रहेंगे। तो भगवान का जब चरण को ग्रहण कर लेते हैं, उनके शरणागत हो जाते हैं, तो दुख संसार में रहते हुए भी दुख का अनुभव नहीं होता है। जैसे कि एक राजा होता है, तो राजा के साथ में देखिए उच्च छत्र चलता है, हमेशा लेके चलते हैं लोग, लेकिन वो राजा जब चलता है तो उसके साथ में छत्र रहता है, लेकिन वो जब घर में बैठा रहता है तो उसके ऊपर छत्र नहीं रहता है, जब वो सोता रहता है तो छत्र नहीं रहता है, इसलिए उसको राजा कहते हैं, है ना। लेकिन जिसने भगवान की शरण ग्रहण कर लिया, अपने मन बुद्धि सारे चीज को भगवान को अर्पण कर चुका है, जितने भी जो भी सन्यासी है, साधु जन है, जो पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हो चुके हैं, उनके साथ कंटिन्यू एक छत्र रहता है, इसलिए उनको महाराज कहते हैं, है ना। वो राजा है लेकिन इनको महाराजा कहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर एक छत्र है, जो भगवान की कृपा है ना, ये कंटिन्यूअसली रहता है, इसलिए वो कभी भी वो विचलित नहीं होता, हमेशा अपने आप प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं हमेशा, जिससे जिनको की देखकर हम उत्साहित होते हैं कि क्या ऐसा चीज उन्होंने प्राप्त कर लिया जो कि उनको इस संसार के कोई भी दुख सता नहीं रहा है, हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा विचलन करते रहते हैं। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने पूर्ण रूप से भगवान का शरण ग्रहण कर लिया है, जिसके कारण वो जो छत्र है कंटिन्यू उनके साथ में रहता है, जिसके कारण उनको दुख का अनुभव नहीं होता। यही बात को आगे सारे देवी देवता स्तुति करते हुए, 7-8 श्लोकों के बाद आएगा वो, तो स्तुति करते हुए देवी देवता भगवान के चरणों की महिमा को बताते हैं बहुत सुंदर रूप से। ठीक है, हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय।